पृष्ठ संख्या 483, हिंदी प्रेमाख्यानों का छंद विधान। फारसी की मसनवियों में जिन छंदों का प्रयोग हुआ है, उनका उपयोग हिंदी के प्रेमाख्यानों में नहीं हुआ। यह हो भी कैसे सकता था, क्योंकि जिस समय हिंदी सूफी काव्य का सूत्रपात हुआ, उस समय फारसी के छंद भारतवर्ष में प्रचलित नहीं हुए थे। वस्तुतः फारसी छंदों का चलन भारत में सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाह सन पृष्ठ संख्या 484 989 1020 हिजरी अर्थात सन 1581 1611 ईस्वी के समय में हुआ। बादशाह स्वयं उच्च कोटि का कवि था और मानी उपनाम से दक्षिणी में कविता करता था। एक, उसी ने सबसे पहले फारसी छंदों का व्यवहार अपनी रचनाओं में किया। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद महमूद शिरानी के शब्दों में मोहम्मद कुली कुतुब शाह सन 989 व 1020 हिजरी ने अव्वल सर्वप्रथम अपना कुलियात कविताओं का संग्रह फारसी अवजान के मुताबिक अनुसार मुर्तब किया। दो, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अधोलिखित गज़ल को अमीर खुसरो सन 1255-1324 ईस्वी की रचना समझकर यह लिख दिया कि अमीर खुसरो द्वारा अरुज़े फ़ारसी फ़ारसी छंद शास्त्र ने पहला कदम हिंदुस्तान में रखा। तीन, ज हाले मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ की ताबे हिजरा न दारम ए जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। चार, एक, श्री राम बाबू सक्सेना तारीख़े अदब उर्दू लखनऊ पृष्ठ 64-65। दो, ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 17 अदद 4 अगस्त सन 1941 ईस्वी प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी का लेख तनकीद बर आबे हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पृष्ठ 77। तीन, मौलाना मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात लाहौर मुबारक अली सन 1950 ईस्वी पृष्ठ 77। चार, क, वही पृष्ठ 77। ख, खुसरो की हिंदी कविता संपादक श्री ब्रज रत्न दास काशी नागरी प्रचारणी सभा संवत 2010 विक्रम पृष्ठ 51। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद महमूद शिरानी ने सिद्ध किया है कि इस गज़ल का वजन अमीर खुसरो के अहद से 125-150 साल बाद ईरान में राइज व्यवहृत हुआ। जब फारसी में यह वजन इस कद्र में आया तो पृष्ठ संख्या 485 अमीर खुसरो के हाँ रेख्ता में कहाँ से आ जाता, और हमें मानना पड़ता है कि अमीर के अहद में यह वजन मुखवज प्रचलित नहीं था। एक, प्रोफेसर शिरानी ने यह भी लिखा है कि उक्त गज़ल अमीर खुसरो के स्थान पर कवि जाफर की मानी जाती है। दो, उपर्युक्त विवेचन के अनंतर यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में फारसी छंदों को सर्वप्रथम ग्रहण करने का श्रेय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को प्राप्त है। इससे बहुत पहले हिंदी सूफी कवि लोक प्रचलित दोहा और चौपाई छंदों को अपनी प्रेम गाथाओं के लिए उपयुक्त समझ चुके थे और दोहा चौपाई छंद युग्म को अपना चुके थे। बाद में केवल कवि नूर मोहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरवय का प्रयोग किया और कवि नसीर ने षड ऋतु वर्णन के अंतर्गत सोरठा कवित्त एवं सवैया का व्यवहार किया। कथा कामरूप प्रेम कथानक की रचना मित्र छंद में हुई है। वस्तुतः लोक प्रचलित छंद दोहा और चौपाई हिंदी सूफी कवियों के कंठहार रहे हैं। इसका पहला मुख्य कारण यह है कि फारसी साहित्य के प्रभाव से मुसलमानों में तुक मिलाकर लिखने या बात करने तीन की प्रवृत्ति घर कर गई थी। एक, ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 15 अदद 3 मई सन 1939 ईस्वी प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी का लेख बाज जदीद दरियाफ्त शुदा रेखते पृष्ठ 21। दो, क, 11वीं सदी हिजरी के वस्त मध्य की एक रवायत इस गज़ल को जाफर की यादगार बताती है, वही पृष्ठ 21। ख, ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 17 अदद 4 अगस्त सन 1941 ईस्वी प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी का लेख तनकीद बर आबे हयाते मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पृष्ठ 76। तीन, जैसे देखा कि एक जवान है खुश लिबास, घोड़ा उसके पास, एक पर मुझे सवार किया, दूसरा आप लिया, घोड़े उठाए और निकल आए। पृष्ठ संख्या 486। ईरानी तुक को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उनके गद्य में भी तुक का बोलबाला हो गया। ईरान के साहित्य में मुस्लिम पूर्व काल में भी तुक मिलाने की प्रथा थी और बाद में तो फारसी गद्य एक में भी तुक मिलाकर लिखने की प्रथा चल पड़ी। दो, फारसी मसनवी में तो तुक मिलाने का नियम है ही, प्रत्येक पद्य के दोनों चरण तुकांत होते हैं। फारसी साहित्य का प्रभाव हिंदी के मुसलमान सूफी काव्यकारों पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में फारसी का साम्राज्य था। अतएव उन्होंने दोहा, तीन और चौपाई छंदों को, जिनमें तुक मिलाकर लिखने की प्रथा थी, अपना लिया। दूसरा मुख्य कारण यह है कि दोहा और चौपाई कथा प्रधान वर्णनात्मक प्रबंध काव्यों को अपेक्षित गति और प्रवाह देने में पूर्ण समर्थ हैं। अतएव प्रथम उक्त प्रभाव से तथा द्वितीय मूलभूत गुणवत्ता के कारण ये छंद हिंदी सूफी कवियों को बहुत प्यारे रहे हैं। एक, लफ्ज शब्द की दृष्टि से फारसी गद्य के तीन प्रकार हैं। क, मुसज्जा तुक से युक्त, वह गद्य प्रकार जिसमें प्रत्येक वाक्य के अंतिम शब्द में तुक हो। प्रत्येक वाक्य में कम से कम दो और अधिक से अधिक 25 शब्द हो सकते हैं। ख, रज्जज, वह गद्य प्रकार जिसमें वाक्य के शब्द एक वजन के तो हो परंतु तुकांत न हो, जैसे कामते मौजू के रूबरू सर्वे रवा नाचीज है, काकुले पेचा के सामने मुश्के खुतन बेकद्र है। ग, आरी, वह गद्य प्रकार जो सरल होते हुए उच्च कोटि का हो। दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2006, पृष्ठ 93। तीन, इस छंद में नई बात यह है कि इसमें तुक मिलाए जाते हैं। संस्कृत प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा न थी। दोहा वह पहला छंद है जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चलकर एक भी ऐसी अपभ्रंश कविता नहीं लिखी गई जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 93। समष्टि रूप से पृष्ठ संख्या 487, कहा जा सकता है कि अपनी भाषा के इन काव्य ग्रंथों में यही छंद रूप व्यवहित हैं। दोहा चौपाई का मूल उद्गम, हिंदी साहित्य की भूमिका और उसकी आदिकालीन परंपरा से अपरिचित कुछ लोगों को भ्रम है कि सूफी काव्य में दोहे और चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने की जो प्रथा है वह सूफी कवियों का अपना आविष्कार है। यह बात नितांत भ्रमजन्य है, क्योंकि वस्तुतः दोहा चौपाई छंदों के माध्यम से प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा अपने प्राचीनतम रूप में अपभ्रंश साहित्य की है। दोहा और चौपाई का सबसे पुराना प्रयोग सरहपात की रचनाओं में मिलता है। आचार्यवर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य की भूमिका एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ द्वय में इन छंदों की परंपरा और उनके परवर्ती विकास पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सिद्ध सरहपात की रचनाओं में से दोहे और चौपाई का एक अंश उद्धृत किया है। ऐसे विसन संधि को पैखई जो जय अस्तीर्ण जाव न दीसई, पंडिड सल सत्थ बवखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई, गमणा गमण न तेन विखंडिय, तो वे लज्ज भणई ह उ पंडिय, जीवंत जो नऊ जरई सो अजरामर होई, गुरु उवये से विमलमई सो पर धरना कोई। इस स्थल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द उल्लेखनीय हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बम्बई, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 58। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 96। गोरखनाथ की बताई जाने, पृष्ठ संख्या 488 वाली वाणियों में भी इस पद्धति को कथनचित खोज लिया जा सकता है, और कबीरदास ने तो निश्चित रूप से इस पद्धति का व्यवहार किया था। एक, बौद्ध सिद्धों के उपरांत जैन कवियों ने दोहा चौपाई की पद्धति को अपनाया। उनके काव्यों में इस छंद युग्म का गठबंधन दर्शनीय है। स्वयंभू के सुप्रसिद्ध महाकाव्य पौमचर्यु में यह शैली निखर उठी। इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, यद्यपि चौपाई छंद का प्रयोग कुछ सिद्ध कवियों द्वारा भी हुआ है, तथापि जैन कवियों ने दोहा छंद के साथ चौपाई का मेल बड़े सुंदर ढंग से किया है। स्वयंभू देव दो ने अपने पौमचर्यु में तो दोहा और चौपाई का प्रयोग ही अधिकतर किया है। तीन, अतएव उपर्युक्त उद्धरण से भी स्पष्ट है कि दोहे चौपाई की दृष्टि से सूफी कवियों ने अपभ्रंश काल से अविच्छिन्न भाव से चली आती हुई। एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 96। दो, स्वयंभू अनुमानतः 8वीं शती विक्रम संवत अपभ्रंश के सर्वोत्तम कवियों में से हैं। उनकी चार महत्वपूर्ण रचनाओं का पता चला है, पौमचर्यु, रामायण, रिट्टणेमी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम कथा का प्रसंग है। इनसे पूर्व रविशेणाचार्य ने संस्कृत में पद्म पुराण लिखा था और विमल सूरि ने प्राकृत में पौमचर्यु। संस्कृत और प्राकृत के पश्चात स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखकर अपभ्रंश की कड़ी भी जोड़ दी। इन तीनों काव्यों में राम कथा जैन धर्म में रूढ़ रामचरित के आधार पर है। डॉक्टर राम कुमार का मत है कि संभव है राम काव्य के महाकवि तुलसीदास ने स्वयंभू देव का पौमचर्यु देखा हो और उसी शैली के अनुकरण में दोहा चौपाई की शैली में अपना रामचरित मानस लिखा हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 195। तीन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 195। पृष्ठ संख्या 489। दोहे और चौपाई में आख्यानक काव्य लिखने वाली शैली का अनुगमन किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उद्धरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। सहज ज्ञान के सिद्धों में से सरहपाद और कृष्णाचार्य के ग्रंथ में दो दो चार चार चौपाइयों अर्धालियों के बाद दोहा लिखने की प्रथा पाई जाती है। अपभ्रंश काव्यों में दस दस बारह बारह चौपाइयों अर्धालियों के बाद घत्ता, उल्लाला आदि लिखकर प्रबंध लिखने का नियम बहुत पुराना है। अपभ्रंश काव्य में ठीक उन्हें चौपाई नहीं कहते थे, परंतु हैं वे वही चीज जिसे तुलसीदास और जायसी आदि ने चौपाई कहा है। ये दो श्रेणियों में पाए जाते हैं, पदझटिका और अलिल्लह। इनमें अलिल्लह तो चौपाई ही है, अंतर इतना ही है कि चौपाई के अंत में दो गुरु हो सकते हैं, पर इसके अंत में दो लघु होने चाहिए। यह अंतर भी व्यवहार में शिथिल हो जाता है। दस बारह पदझटिका या अलिल्लह जिसके बाद घत्ता या कब या उल्लाला होते हैं। इन छेदात्मक छंदों अर्थात घत्ता, उल्लाला आदि के बीच की अलिल्लह आदि चौपाई जातीय छंदों की पंक्तियों को अपभ्रंश साहित्य में कड़वक कहते हैं। इस प्रकार यह पद्धति अर्थात कड़वक के बाद छेदात्मक उल्लाला या कब छंद देकर धारावाहिक रूप से प्रबंध काव्य लिखना सूफी कवियों की इजाद नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बम्बई, पंचम संस्करण, पृष्ठ 59। अतः अपभ्रंश के महाकाव्यों की उक्त पद्धति को हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई वाली पद्धति का स्रोत स्वीकार करना चाहिए। दोहा, यह अपभ्रंश का लाडला छंद है। यह अपभ्रंश की साहित्यिक एवं छांदसिक परंपरा का प्रतीक है। जिस प्रकार श्लोक का नाम लेने पर संस्कृत और गाथा का नाम लेने पर प्राकृत का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार दोहा बंध से अपभ्रंश रचना का बोध होता है। प्रबंध चिंतामणि में तो दोहा विद्या, पृष्ठ संख्या 490 में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, जो यह सूचित करती है कि अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहने लगे थे। एक, दोहा शब्द की व्युत्पत्ति अभी तक अस्पष्ट है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार दोहा या दुहा की उत्पत्ति कतिपय लेखकों ने संस्कृत के दोधक से मानी है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकारों ने इसका मूल द्विपदा शब्द को बताया है। यह उत्तरकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। दोहा वह पहला छंद है जिसमें तुक मिलने का प्रयत्न हुआ। हजारी प्रसाद दो, परंतु दोधक वर्ण छंद है और दोहा मात्रिक छंद। इसके अतिरिक्त दोधक एवं दोहा की मात्राओं में भी अंतर है। दोधक में 3 भगण और 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 17-17 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्धसम मात्रा छंद है जिसके विषम प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और सम द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अतः दोहे और दोधक का साम्य और संबंध निराधार है। हमारे विचार से दोहा शब्द की व्युत्पत्ति द्विपद अथवा द्विपदा से स्वीकारी जा सकती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के साहित्यिक निबंध नामक ग्रंथ से प्रस्तुत उद्धरण ध्यान देने योग्य है। जैन कवि पुष्पदंत ने अपने कृष्ण लीला में 2 पंक्तियों वाले छंद विशेष के लिए दुवई नाम का प्रयोग किया है, जिसे राहुल जी ने द्विपदी का तद्भव माना है। द्विपदी से दुवई की भांति ही द्विपद से दुवा की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। दुवा से क्रमशः दुआ, दुवा, दुहा व दोहा का विकास हुआ। 3. अतः द्विपद अथवा द्विपदा से दोहे की व्युत्पत्ति का रहस्य खोजना समीचीन प्रतीत होता है। 1. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955, पृष्ठ 11। 2. हिंदी साहित्य कोश, बनारस, विक्रम संवत 2015, पृष्ठ 343। 3. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहित्यिक निबंध, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, सन 1963, पृष्ठ 549, पृष्ठ संख्या 491। डॉक्टर ए एन उपाध्याय 1, डॉक्टर ग व तगारे 2, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 3, डॉक्टर पी एल वैद्य 4। प्रभृति विद्वानों के मतानुसार दोहा को सबसे प्राचीन रूप विक्रमोर्वशीय में उपलब्ध है। फिर भी 5वीं या 6वीं शताब्दी के पश्चात दोहा काफी प्रयोग में आता रहा। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपभ्रंश का साहित्य 5वीं-6वीं शताब्दी में काफी मात्रा में वर्तमान था। दंडी और भामा ने उस साहित्य को देखा था और एकाध शताब्दी बाद के तो कई अपभ्रंश काव्य और दोहा ग्रंथ मिल भी गए हैं। अपभ्रंश को दोहा विद्या कहा गया है। इससे भी पता चलता है कि शुरू शुरू में दोहा अपभ्रंश का प्रतीक था। बौद्धों और जैनों के कई दोहाबद्ध अपभ्रंश काव्य मिले हैं। 5. गाथा की भांति अपभ्रंश के दोहे अपने आप में परिपूर्ण मुक्तक काव्यों के वाहन स्वीकार किए गए थे और सच पूछिए तो दोहा मुक्तक काव्य का ही सफल वाहन है। 6. 4 प्रकार से इनका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ। 1. निर्गुण प्रधान और धार्मिक उपदेश मूलक दोहे। बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियों की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे प्राप्त होते हैं। इनकी सीधी परंपरा में संत कवियों के दोहे हैं। 1. डॉक्टर उपाध्याय ए एन, परमात्म प्रकाश भूमिका, पृष्ठ 56, टिप्पणी 1। 2. पुरुषार्थ पत्रिका, जून 1942। 3. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 92। 4. डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 14। 5. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 92। 6. वही पृष्ठ 92, पृष्ठ संख्या 492। 2. श्रृंगारी दोहे प्राकृत की गाथाओं की भांति ये अपभ्रंश में बहुत अधिक प्रचलित थे। इन दोनों की सीधी परंपरा ढोला मारू के दोहों 1 और बिहारी मतिराम आदि की सत्सईयों तथा मुबारक अली के शतकों में सुरक्षित है। 3. नीति विषयक दोहे। इनका पता हेमचंद्राचार्य के संग्रहित दोहों से लगता है। यह परंपरा भी हिंदी में सुरक्षित है। रहीम, तुलसीदास, वृंद और बिहारी की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे आए हैं। 4. वीर रस के दोहे। यह अपभ्रंश साहित्य की अपनी विशेषता हैं। इनमें स्त्रियों के मुख से अपने वीर पतियों के संबंध में अपूर्व दर्पोक्तियां कहलाई गई हैं। राजस्थान के साहित्य में यह विशेषता प्रचुर मात्रा में सुरक्षित है। 2. अंत में यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि कथानक सूत्र को जोड़ने के उद्देश्य से दोहों के बीच बीच में चौपाई जोड़कर कथानक को क्रमबद्ध करने का प्रयास अपभ्रंश में किया गया। इसी पद्धति को प्रेमाख्यानक परंपरा के सूफी कवियों ने प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाया। एक, ढोला मारू के दोहे यद्यपि कथानक रूप में लिखे गए हैं परंतु वे वस्तुतः मुक्तक ही हैं। दो, उदाहरणार्थ एक दोहा देखिए, सजन सिखाया है सखी, वाजे वाजा रंग, जिन वाटे सज्जन गया सो वाटड़ी सुरंग। हुमायूं, लाहौर, जिल्द 32, नंबर 4, अक्टूबर सन 1937, पृष्ठ 717-18। अर्थात, हे सखी, साजन युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए, खूब धूमधाम से बाजे बजे, जिस राह पर साजन गए हैं वह राह कितनी रंगीन है। सूफी काव्य में प्रयुक्त दोहों में आदर्श दोहों 13-11 मात्राएं पृष्ठ संख्या 493 से कहीं कहीं भिन्नता दिखाई देती है, इनमें न्यूनाधिक मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं। चौपाई, यह एक छोटा छंद है, कथानक छंद होने के कारण यह कथानक को सहज ही जोड़ देता है। निस्संदेह यह प्रबंध काव्य का प्रमुखतम वृत्तात्मक स्वरूप है। अपभ्रंश काल के आरंभ ही से इस कथानक सूत्र योजक छंद की उपयोगिता को समझा जाने लगा था, अतएव अपभ्रंश साहित्य में चौपाइयों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई है, परंतु इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी दोहों की है। अपभ्रंश भाषा में अरिल्ल या अडिल्ल नामक 16 मात्रा का छंद प्राप्त होता है, इसे चौपाई का पूर्व रूप कहा जा सकता है। अरिल्ल छंद एवं चौपाई में मात्राएं तो 16-16 ही होती हैं, परंतु इनमें मूल भेद है अंत की मात्राओं का। चौपाई के अंत में दो गुरु का प्रयोग होता है और अरिल्ल के अंत में दो लघु का। अपभ्रंश में अरिल्ल अथवा चौपाई को पद्धड़िया बंध कहते हैं, क्योंकि डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी 1 के अनुसार कोई भी 16 मात्रा का छंद बंध पद्धड़िया बंध 2 के अंतर्गत आ सकता है। हिंदी सूफी काव्य में मात्राओं की कमी बेशी भी कहीं कहीं पाई जाती है, 14, 15, 16 और 17 मात्राओं वाली चौपाइयां भी मिलती हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शायद ग्रंथों का ठीक संपादन न हुआ हो। 1. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, देहली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 13। 2. जिस प्रकार आजकल हम लोग चौपाई लिखने में तुलसीदास की शिष्टता बतलाया करते हैं, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुह या चतुर्मुख को पद्धड़िया का राजा बताया था। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 94। डॉ. शिव गोपाल मिश्र के मतानुसार अनेक सूफी कवियों के अध्ययन पृष्ठ संख्या 494 से यह सारांश निकलता है कि दोहे चौपाइयों का जो स्वतंत्र छंद शास्त्र द्वारा स्वीकृत है वह पहले मुक्त था, उसमें न्यूनाधिक मात्राओं का प्रयोग हो सकता था। 1. हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में चौपाई छंद का जो विधान है वह अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों की कड़वक योजना से पूर्णतः प्रभावित है। 2. अतः कुछ चौपाइयों के उपरांत दोहा अथवा सोरठा छंद लगाने की शैली मूलतः अपभ्रंश साहित्य से अपनाई गई है। इन कड़वकों में हम यह भी देखते हैं कि कहीं कहीं विषम संख्यक अर्धालियों का प्रयोग किया गया है, अतएव हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विषम संख्यक अर्धालियों की पद्धति भी स्पष्टतः इसी प्रबंध रूढ़ी से प्रभावित है, यह कहने में कोई अत्युक्ति न होगी। डॉ. राम सिंह तोमर के शब्दों में वास्तविकता यह है कि अपभ्रंश में कवि छंद के दो चरणों को स्वतंत्र चरण मान लेते हैं, अर्थात चौपाई के पूरे 4 चरण लिखने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, दो चरण से ही छंद समाप्त कर देते हैं। 3. जायसी आदि कवियों में इसी प्रबंध रूढ़ी के हमें स्पष्ट दर्शन होते हैं। रामचरितमानस का छंदोबद्ध करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा और चौपाई को मूल आधार चुना है। डॉ. शिव कुमार शुक्ल के शब्दों में दोहा और चौपाई के अतिरिक्त मानस में सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी, चौपैया और तोमर आदि मातृका छंदों का विशेष प्रयोग किया गया है। इन सभी छंदों में कथा के प्रवाह की दृष्टि से चौपाई का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मिलता है। 1. कुतुबन कृतमृगावती, भूमिका, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 37। 2. डॉ. शंभुनाथ सिंह, हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, काशी, सन 1956, पृष्ठ 193। 3. प्रेमी अभिनंदन ग्रंथ, जैन साहित्य की हिंदी साहित्य को देन, राम सिंह तोमर, पृष्ठ 468। इस दिशा में अपभ्रंश के काव्य और हिंदी के पद्मावत आदि में चौपाई की प्रभविष्णुता से तुलसी अवश्य प्रभावित, पृष्ठ संख्या 495 जान पड़ते हैं। एक, जो कुछ भी हो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा चौपाइयों की शैली को अपने चरम विकास तक पहुंचा दिया। चौपाई छंद के तो तुलसीदास राजा हैं, यह निर्विवाद है। हिंदी सूफी काव्य में दोहा चौपाई का क्रम, कितनी अर्धालियों के उपरांत घत्ता दिया जाए इसका कोई नियम नहीं है। किसी सूफी कवि ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7 अर्धालियों पर दोहा लिखा है। कभी कभी 9 अर्धालियों पर भी दोहे का क्रम मिलता है। शुरू शुरू में पाई जाने वाली सूफी कहानियों में 5-5 अर्धालियों के बाद दोहा देने का नियम था। मौलाना दाऊद कृत चंदायन में 5 अर्धालियों के बाद दोहा रखा गया है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त 2 के शब्दों में, पुरातत्व विदों और इतिहासकारों की खोज के परिणाम स्वरूप 1955 ईस्वी तक चंदायन की फारसी लिपि में लिखित 4 खंडित प्रतियां ज्ञात हुईं। ये सारी प्रतियों में इस दृष्टि से एक रूपता है कि उनमें से प्रत्येक के एक पृष्ठ पर केवल एक कड़वक अंकित है। एक कड़वक में 5 पंक्तियां चौपाइयों की और अंत में एक दोहा है। 3, कुतुबन ने मृगावती में 5 अर्धालियों के उपरांत दोहा रखा है। 1, डॉक्टर शिव कुमार शुक्ल रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, कानपुर 1964 ईस्वी, पृष्ठ 328-29। 2, सम्मेलन पत्रिका प्रयाग भाग 47 अंक 1, पौष फाल्गुन शक 1882, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का लेख मौलाना दाऊद कृत चंदायन, पृष्ठ 11। 3, सम्मेलन पत्रिका प्रयाग भाग 47 अंक 1, पौष फाल्गुन शक 1882, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का लेख मौलाना दाऊद कृत चंदायन, पृष्ठ 11। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा प्रभृति ग्रंथों में सर्वत्र चौपाई की 7 पंक्तियों के पश्चात एक दोहे का, पृष्ठ संख्या 496, विधान किया है। कवि ने अखरावट में प्रत्येक दोहा के साथ एक सोरठा भी रखा है। इस प्रकार से जायसी प्रथम सोरठाकार हैं। 1, मंझन कृत मधुमालती में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है। शेख नबी ने ज्ञानदीप में 7 अर्धालियों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर में 7-7 अर्धालियों के पीछे एक दोहे का क्रम अपनाया है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे का विधान किया है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में 6 अर्धालियों के बाद एक बरवय का प्रयोग किया है। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द उल्लेखनीय हैं। जिस प्रकार धत्ता के स्थान पर अपभ्रंश काव्य के कड़वकों में दूसरे दूसरे छंद भी रख दिए जाते थे, उसी प्रकार परवर्ती काल में अवधि के प्रबंध काव्यों में दोहा के स्थान पर अन्य छंदों के रखने की प्रवृत्ति का भी कुछ प्रमाण मिल जाता है। नूर मोहम्मद ने दोहा के स्थान पर बरवय रखकर अपने अनुराग बांसुरी नामक प्रबंध काव्य के कड़वकों की रचना की थी। 2, हुसैन अली कृत पुहपावती में 9 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम है। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा में भी 9 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान किया है। इसके अतिरिक्त षड ऋतु एवं 12 मासा वर्णन के अंतर्गत सोरठा, कवित्त तथा सवैया छंदों का प्रयोग किया है। इस संबंध में श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इन्होंने शेख निसार अपनी रचना में विशेषकर ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन के समय कवित्त और 1, डॉक्टर जयदेव सूफी महाकवि जायसी अलीगढ़ सन 1957 ईस्वी, पृष्ठ 150। 2, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 99-97, पृष्ठ संख्या 497। सवैया भी खूब लिखे हैं, जो कि प्रेम गाथा कवियों के संबंध में एक अनहोनी बात है। इनके कवित्वों में ब्रजभाषा की छाया भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। 2, शाह नजफ अली सलोनी कृत प्रेम चिंगारी में 6 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम निभाया गया है। ख्वाजा अहमद ने नूर जहां में 9 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। शेख रहीम ने भाषा प्रेमरस में 8 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे का विधान किया है। कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण में सात अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम सर्वत्र निभा गया है। इस प्रकार सूफी प्रेमाख्यानों की रचना दोहा चौपाई के क्रम से हुई है। उन्होंने विशेषतः चौपाई छंद को इतना सुस्पष्ट बना दिया है कि वह प्रत्येक भाव के वहन और ज्ञापन में पूर्ण समर्थ हो गया है। निष्कर्ष: यद्यपि छंदों की दृष्टि से हिंदी सूफी कवि फारसी मसनवियों में प्रयुक्त छंदों से प्रभावित नहीं हुए, तथापि उनके लोक प्रचलित छंदों में और फारसी सूफी कवियों के छंदों में समान रूप से मन को रमाने की अपूर्व शक्ति है। फारसी और हिंदी के सूफी कवियों के छंदों के गेय तत्व की मोहकता स्वीकार करने में सब सहमत हैं। फारसी भाषा का उद्भव और विकास और आर्य भाषाओं से इसका संबंध। भारत यूरोपीय कुल। वंश क्रम के अनुसार भाषा तत्वविद संसार की भाषाओं को कुलों, उपकुलों, पृष्ठ संख्या 498, शाखाओं, उपशाखाओं में विभक्त करते हैं। अब तक की खोज के आधार पर संसार की भाषाएं निम्नलिखित मुख्य कुलों एक में विभक्त की गई हैं। एक, भारत यूरोपीय कुल। दो, सेमेटिक कुल। तीन, हेमिटिक कुल। चार, तिब्बती चीनी कुल। पाँच, यूरस अल्टाई कुल। छः, द्राविड़ कुल। सात, मेलेपालिनेशियन कुल। आठ, बांटू कुल। नौ, मध्य अफ्रीका कुल। दस, अमेरिका की भाषाओं का कुल। ग्यारह, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाओं के कुल। बारह, शेष भाषाएं। संसार की भाषाओं के उक्त 12 मुख्य कुलों में भारत यूरोपीय कुल से हमारा संबंध है। संसार के सभी भाषा परिवारों में इस कुल का स्थान सबसे मुख्य और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इस परिवार के बोलने वाले सबसे अधिक हैं और इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व भी सबसे अधिक है। इस परिवार का अध्ययन भी सबसे अधिक हुआ है। दो, इस कथन में अत्युक्ति न होगी कि भाषा विज्ञान का जन्म ही भारत यूरोपीय कुल की भाषाओं के अध्ययन से हुआ। तीन, इस कुल की भाषाएं उत्तर भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा प्रायः संपूर्ण यूरोप में बोली जाती हैं। संस्कृत, पाली, पुरानी ईरानी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि प्राचीन भाषाएं इसी कुल की थीं। आजकल इस कुल में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, नई ईरानी, पश्तो, हिंदी, मराठी, बंगाली तथा गुजराती आदि भाषाएं हैं। चार, इन्हें प्रायः दो समूहों में विभक्त किया जाता है जो केंटुम और शतम समूह कहलाते हैं। एक, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास प्रयाग सन 1949 ईस्वी पृष्ठ 35। दो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान प्रयाग संवत 2006 विक्रम पृष्ठ 65। तीन, श्री ऋषि गोपाल हिंदी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जालंधर संवत विक्रम 2017 पृष्ठ 210। चार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास प्रयाग सन 1949 ईस्वी पृष्ठ 36। पहला समूह प्रधानतया यूरोपीय है और केंटिम समूह पृष्ठ संख्या 499 के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे समूह में पूर्व यूरोप, ईरान तथा भारत की आर्य भाषाएं सम्मिलित हैं। यह शतम समूह कहलाता है। प्रत्येक समूह में चार चार उपकुल हैं। केंटुम समूह एक, ग्रीक दो, इटैलिक तीन, केल्टिक चार, जर्मनिक या टूटोनिक। शतम समूह एक, आर्य या भारत ईरानी दो, आर्मेनियन तीन, बाल्टो स्लोवेनिक चार, अल्बेनियन। आर्य अथवा भारत ईरानी उपकुल। कदाचित संसार के इतिहास में भी इससे प्राचीन कोई भाषा परिवार जीवित अथवा सुरक्षित नहीं है। इसी शाखा के अध्ययन ने भाषा विज्ञान को सच्चा मार्ग दिखाया और इसी के अध्ययन से भारतीय भाषा के मूल रूप की कल्पना बहुत कुछ संभव हुई है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान प्रयाग संवत 2006 विक्रम पृष्ठ 77। आर्य अथवा भारत ईरानी उपकुल की दो मुख्य शाखाएं हैं। एक, ईरानी अथवा फारसी। दो, भारतीय आर्य भाषा। पृष्ठ संख्या 500। मानचित्र भारत यूरोपीय कुल, इसकी 8 शाखाएं। पहला, आर्य या भारत ईरानी। दूसरा, आर्मेनियम। तीसरा, बाल्टो स्लेवोनिक। चौथा, अल्बेनियन। पांचवा, ग्रीक। छठा, इटैलिक। सातवां, केल्टिक। आठवां, जर्मनिक या ट्यूटोनिक। आर्य या भारत ईरानी की तीन शाखाएं, प्राचीन पारसी अवेस्ता, प्राचीन भारतीय वैदिक भाषा। प्राचीन पारसी से मध्य पारसी या पहलवी, पहलवी से आधुनिक फारसी। प्राचीन भारतीय वैदिक भाषा से संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं। फारसी भाषा का मूल बहुत प्राचीन है। विद्वानों और भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने अब से 3000 वर्ष पूर्व इसका स्रोत ढूंढ निकाला है। डॉक्टर अली असगर हिकमत, फारसी साहित्य की रूपरेखा, वाराणसी, सन 1957, पृष्ठ 23। इस भाषा को काल की दृष्टि से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राचीन, प्रागैतिहासिक काल से चौथी शती ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन, चौथी शती ईस्वी पूर्व से सातवीं शती ईस्वी तक। आधुनिक, सातवीं शती ईस्वी से अब तक। प्राचीन फारसी, प्राचीन ईरानी अथवा फारसी में मुख्यतया दो भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, पहला अवेस्ता, दूसरा प्राचीन पारसी या फारसी। ईरान ईरान जो अवेस्ता में एरियाना के रूप में मिलता है, एरियन अवेस्ता में अरिया, एरिया संस्कृत में आर्य का देश है। पृष्ठ संख्या 501, अवेस्ता। उक्त दोनों भाषाओं में से अवेस्ता अधिक प्राचीन है। यह भाषा प्राचीन फारसी की माँ या बेटी नहीं बल्कि बहन है। ईरान के साथ संबंध की ये लगाकर ईरानी शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ ईरान देश की भाषा अथवा ईरान देश के लोग। अकीमिनियन हखमानिश वंश शाहनामा के अनुसार कियानियों के वंश के प्रभुत्व का प्रारंभ ईरान के प्रदेश पारस, ग्रीक के अनुसार परसिस से हुआ, जिससे पारस का महत्व इतना बढ़ गया कि पारस का अर्थ समस्त ईरान देश लिया जाने लगा। पारस के साथ संबंध की ये लगाकर पारसी शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ पारस अर्थात ईरान देश की भाषा। अरबी भाषा में पे की आवाज़ सर्वथा नहीं है, पे का नाम फे से लिया जाता है, अतः अरबी भाषा के प्रभाव से पारसी को फारसी कहने लगे। इसी प्रकार हस्पहान नगर को इस्फहान नगर कहा जाने लगा। अतः ईरानी, पारसी तथा फारसी एक ही भाषा के भिन्न भिन्न नाम हैं। दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता इज एन ईरानियन लैंग्वेज स्टैंडिंग टू ओल्ड पर्शियन इन द रिलेशन ऑफ सिस्टर नॉट ऑफ डॉटर और मदर इज प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। प्रोफेसर ब्राउन, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, भाग 1, लंदन, सन 1925 ईस्वी, पृष्ठ 24। वस्तुतः पारसियों के धर्म ग्रंथ का नाम अवेस्ता। कहा जाता है कि वर्तमान अवेस्ता मूल पुस्तक का एक चौथाई भाग है, शेष भाग कराल काल के हाथों नष्ट हो गए। अवेस्ता के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, पहला यसना, दूसरा यश्त, तीसरा वंदिदाद तथा चौथा विविध। प्रथम में कुछ गाथा अर्थात मंत्र और स्तुतियां हैं। डॉक्टर रिजा दादा शफक के मतानुसार यसना नामक भाग प्राचीनतम है। डॉक्टर रिजा दादा शफक, तारीखी अदबियाते ईरान, 1336-37, पृष्ठ 25। द्वितीय में देवताओं के प्रति प्रार्थनाएं हैं। तृतीय में पूजन निधान और धार्मिक कृत्य वर्णित हैं। अंत में कुछ विविध विषयक अपूर्ण खंड हैं, जिन्हें खुर्दे अवेस्ता कहा जाता है। इसका इतना ही, पृष्ठ संख्या 502, आदर है जितना भारतवर्ष में वेदों का। अवेस्ता ग्रंथ जिस भाषा में लिखा हुआ है उसे ही अवेस्ता कहा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में, पुरानी ईरानी के सबसे प्राचीन नमूने पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में मिलते हैं। अवेस्ता के सबसे पुराने भाग ईसा से लगभग 14वीं शताब्दी पूर्व माने जाते हैं। एक, निस्संदेह अकेमिनियन वंश, दो, के आगमन से बहुत पहले यह भाषा ईरानी में विद्यमान थी और देश के पूर्वी भागों में बोली जाती थी। अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से बहुत मिलती जुलती है। एक, प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी भाषा का इतिहास, प्रयाग, सन 1949 ईस्वी, पृष्ठ 40। दो, अकीमिनियन युग का आरंभ वस्तुतः साइरस महान 559-529 ईस्वी पूर्व के साथ हुआ। ईरान का इतिहास भी विधिवत साइरस महान ही से आरंभ किया जाता है। हखनानी वंश के 12 बादशाह हुए, अंततः सिकंदर महान ने अकीमिनियनों को पराजित कर इस वंश का अंत कर दिया। अंतिम अकीमिनियन शासक 330 ईस्वी पूर्व में मौत के घाट उतार दिया गया। क, ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 15 अदद 3 मई 1939 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का लेख तारीख ईरान कदीम का मुताला पृष्ठ 86-87 ख साइक्स पी ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया लंदन सन 1951 ईस्वी भाग 1 पृष्ठ 279-80। इसमें आश्चर्य भी नहीं क्योंकि ईरान के प्राचीन लोग अपने को आर्य वर्ग का पृष्ठ संख्या 503 मानते थे। इसका उल्लेख इनके ग्रंथों में बहुत स्थलों पर पाया जाता है। एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भी सामान्य रूप से गाथा अवेस्ता और वैदिक संस्कृत में थोड़े ध्वनि विकारों को छोड़कर कोई भी भेद नहीं पाया जाता। अवेस्ता का वाक्य सहज ही में वैदिक संस्कृत बन जाता है। दो अतएव अवेस्ता और वैदिक संस्कृत में अनेक बातों में समानता है। वस्तुतः इसी घनिष्ठ समानता के कारण भारत ईरानी भाषा की कल्पना की गई है। प्राचीन पारसी प्रागैतिहासिक काल से ईरान के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रचलित थी। डॉक्टर अली असगर हिकमत के शब्दों में अकेमेनियन युग में तथा उनके आगमन के पूर्व भी मीण वंश के राजत्व काल 3 में प्रायः 5 शतियों तक 700 से 300 ईसा पूर्व प्राचीन पारसी उस विशाल भूक्षेत्र के लोगों की भाषा थी। 4 अकेमेनियन अथवा हखनानी वंश के शासकों ने अपनी मातृभाषा प्राचीन पारसी को विशेष महत्व दिया, उसे अपने शासन काल में राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास प्रयाग सन 1949 ईस्वी पृष्ठ 40। 2 डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान प्रयाग संवत 2006 पृष्ठ 85। 3 हकीकी तारीख की रूह से ईरान 8वीं और 7वीं सदी कबल मसीह में शाहाने मीडिया के मातहत अधीन था। ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर जिल्द 15 अदद 3 मई 1939 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का लेख तारीख ईरान कदीम का मुताला पृष्ठ 86। 4 डॉक्टर अली असगर हिकमत फारसी साहित्य की रूपरेखा वाराणसी सन 1956 ईस्वी पृष्ठ 25। उन्होंने मेघी लिपि में शिलालेख खुदवाए पृष्ठ संख्या 504। उन शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध महाराज दारा 522 से 489 ईस्वी पूर्व के शिलालेख हैं। इन्हीं शिलालेखों के आधार पर फारसी साहित्य का श्री गणेश महाराज दारा के समय से माना जाता है। 1 इन लेखों में दारा अपने आर्य होने का उल्लेख गर्व के साथ करता है। 2 ये शिलालेख ईरान में पर्सिपोलिस और पजागार्द शिराज के उत्तर में बिसितून किरमान शाह के पश्चिम उत्तर में गंजना में हमादान इत्यादि में पाए जाते हैं। इन शिलालेखों के अतिरिक्त कुछ ताम्रपत्र मुद्रा सिक्के आदि उपलब्ध होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन काल में प्राचीन पारसी में वांग्मय रहा होगा, परंतु दुर्भाग्यवश सिकंदर के आक्रमण पार्थियन अथवा अरसासिदों के उदयोपरांत अंधकार युग और ईरान पर अरब विजय के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया है। अवेस्ता और प्राचीन पारसी में बहुत अधिक समानता है, इसलिए अवस्था के समान प्राचीन पारसी भी बहुत अंशों में संस्कृत से मिलती जुलती है। 3 हमारे विचार से अवेस्ता संस्कृत तथा प्राचीन पारसी बहनों के समान है। आजकल के ईरान की भाषा इसी प्राचीन पारसी से निकली हुई है और इसकी बेटी बल्कि पोती का दर्जा रखती है। 1 पर्शियन लिटरेचर में भी सेट टू बिगिन विद डेरियस श्री लेवी आर पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1936 ईस्वी पृष्ठ 6। 2 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास प्रयाग सन 1949 ईस्वी पृष्ठ 40। 3 श्री ऋषि गोयल हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जालंधर संवत 2017 विक्रम पृष्ठ 254। मध्यकालीन फारसी या पहलवी पुरानी पारसी के बाद माध्यमिक ईरानी भाषा का काल आता है। यह पृष्ठ संख्या 505 पहलवी नाम से अभिहित है। पहलवी भाषा प्राचीन पारसी की एक शाखा है, एक अथवा उसी का एक परिवर्तित रूप है। डॉक्टर अली असगर हिकमत के शब्दों में अरसासिदों के राज्यकाल में प्राचीन फारसी में परिवर्तन हुआ और वह पहलवी भाषा के रूप में अथवा मध्य फारसी के रूप में विकसित हुई। 2 इसको मध्य फारसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्राचीन फारसी और आधुनिक फारसी की श्रृंखला को जोड़ने वाली एक कड़ी है। पहलवी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में एक मत नहीं है। कई कहते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति पहलू आर्ष से हुई है, जिसके साथ संबंध सूचक ये लगी हुई है। इसका अर्थ हुआ पहलू से संबंध रखने वाली। पार्थिया तीन, जो उस समय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का केंद्र था, ईरान के पहलू में स्थित था और यही इस भाषा का बोलबाला था। डॉक्टर रिजाजादा शफक के विचारानुसार पहलवी शब्द के संबंध में जो खोज की गई है उससे मालूम होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति परसव से हुई है, जो अश्कानी कौम का नाम है। इस शब्द में पहले रे बदलकर लाम हो गया और इस शब्द का रूप पलसव बन गया, फिर से बदलकर हे अक्षर हो गया और यह शब्द पहलव हो गया। एक, ज़बाने पहलवी अस ज़बाने पारसी ये वास्तान मुश्तक अस्त यानि दर कलिमातो तरकीबे कलामे पारसी ये वास्तान बमरूरे ज़मान तगे युराते रुए दादा व बसूरते ज़बाने पहलवी दर आमदा। अर्थात पहलवी भाषा प्राचीन पारसी से उत्पन्न हुई है, यानी समय के साथ साथ प्राचीन पारसी के शब्दों एवं वाक्य विन्यासों में जो परिवर्तन हुए वे पहलवी भाषा के रूप में प्रकट हुए। डॉक्टर इजाज़ादा शफक, तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 28। दो, डॉक्टर अली असगर हिकमत, फारसी साहित्य की रूपरेखा, वाराणसी सन 1957 ईस्वी पृष्ठ 30। तीन, प्राचीन इतिहास में पार्थिया का प्रदेश वही था जो अब खुरासान है। इसके पश्चात पृष्ठ संख्या 506 इस शब्द में पुनः परिवर्तन हुआ और यह पलहव से पहलव बन गया। इस पर संबंध सूचक ये बढ़ाने से पहलवी कहलाया। एक, वस्तुतः पहलवी शब्द उस लिपि के लिए व्यवहृत होता था। दो, जिसमें अश्कानी अथवा अरसा सिद्ध 250 ईस्वी पूर्व 226 ईस्वी और विशेषकर सासानी युग 226 से 651 ईस्वी की राज्यभाषा लिखी जाती थी। यही राज्यभाषा पहलवी नाम से प्रसिद्ध हुई। पहलवी अरसा सिद्ध युग में पल्लवित एवं पुष्पित और सासानी युग में फलित हुई। इस प्रकार पहलवी के दो रूप हो गए, प्रथम अरसा सिद्ध पहलवी तथा द्वितीय सासानी पहलवी। सासानी युग में यह पूरे ईरान में फैल गई और देश के मध्य तथा दक्षिणी भागों में विशेषतया लोकप्रिय रही। इसमें महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया। आपने शाहनामा में फिरदौसी ने कई अवसरों पर इस भाषा का उल्लेख किया है। पहलवी भाषा के संबंध में ख्वाजा हाफिज शिरानी ने भी इस प्रकार अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। बुलबुल जे शाखे सर्व ब गुलबांगे पहलवी मी खांद दोष दरसे मकामाते मानवी। तीन, अर्थात बुलबुल सर्व की शाख से पहलवी भाषा में कल आध्यात्मिक अवस्थाओं का पाठ पढ़ रही थी। इस प्रकार सासानी काल में पहलवी भाषा का विकास चरम सीमा तक पहुंच गया। एक, डॉक्टर इज़ाज़ादा शफक, तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 19। दो, प्रायरली स्पीकिंग द टर्म पहलवी अप्लाइज रादर टू द स्क्रिप्ट देन द लैंग्वेज। प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 1 सन 1925 ईस्वी पृष्ठ 7। तीन, दीवान हाफिज मस्जिदी प्रेस लखनऊ पृष्ठ 408। एक आधुनिक भाषा शास्त्री एवं प्राच्य विद्यावेत्ता एच डब्ल्यू वैली के शब्दों में सासानी युग का 7वीं सदी ईस्वी में अंत होने पृष्ठ संख्या 507 तक पहलवी आधुनिक अफगानिस्तान की पश्तों की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित हो गई थी। एक, 7वीं शताब्दी ईस्वी में पहलवी भाषा को अरब आक्रमण का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस पर अरबी भाषा का पर्याप्त प्रभाव पड़ने लगा और धीरे धीरे इसने अरबी के हजारों नए शब्द मुहावरे प्रयोग और व्याकरण के नियम आत्मसात कर लिए। इससे सेमेटिक भाषा का प्राचीन आर्य भाषा पर गहन प्रभाव पड़ा। इस दृष्टि से पहलवी के दो रूप माने जाते हैं, पहला अरबी शब्दों से परिपूर्ण हुजारेश और दूसरा पाजंद, जिसमें अरबी के शब्द बहुत अधिक नहीं हैं। दो, प्रोफेसर ब्राउन के मतानुसार पहलवी भाषा को मतरूक अप्रचलित हुए प्रायः 1000 साल का समय व्यतीत हुआ है। तीन, परंतु अरब आक्रमण 7वीं सदी ईस्वी के उपरांत यह ह्रासोन्मुख हो गई थी। परवर्ती काल में इसका व्यवहार उन विदेशगामी ईरानियों के मंडल तक सीमित रह गया जो दक्षिण पश्चिमी भारत की ओर गए और 7वीं या उसके पश्चात गुजरात में बस गए। पहलवी साहित्य जो आज सुलभ है उसको स्थूल रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक, ज़ोरोस्ट्रियन धर्म ग्रंथ। 2. शिलालेख तथा मुद्राएं. 3. सासानी सिक्के जिनमें उक्त वंश के राजाओं के नाम तथा उपाधियां हैं, तथा 4. इतिहास, भूगोल, परंपरागत जीवन, साहित्य आदि पर अन्य विविध पुस्तकें. 1. दी लेगेसी ऑफ पर्शिया, संपादक डॉक्टर ए जे आरबेरी, लंदन, सन 1953 ईस्वी, प्रोफेसर एच डब्ल्यू बेली का लेख दी पर्शियन लैंग्वेज, पृष्ठ 190. 2. श्री ऋषि गोपाल, हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, जालंधर, संवत विक्रम 2017, पृष्ठ 254. 3. प्रोफेसर ब्राउन, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, प्रथम भाग, लंदन, सन 1925 ईस्वी, पृष्ठ 8. पृष्ठ संख्या 508. इस समय जो भी ग्रंथ प्राप्त हैं वे अत्यधिक साहित्यिक और ऐतिहासिक मूल्य के साथ गंभीर महत्व के हैं. 1. इनमें अधिकतर बंबई में प्राप्त हैं. आधुनिक फारसी. आधुनिक फारसी प्राचीन फारसी की पौत्री और मध्य फारसी की पुत्री है. इसका जन्म मध्य फारसी, सासान पहलवी और अरबी भाषाओं के सम्मिश्रण से हुआ. इस दृष्टि से आधुनिक फारसी का बहुत कुछ साम्य अंग्रेजी से है, क्योंकि अंग्रेजी भी एंग्लो सैक्सन, जर्मन भाषाएं, लैटिन तथा ग्रीक का सम्मिश्रण है. डॉक्टर अली असगर हिकमत के विचारानुसार जीव विज्ञान वेत्ताओं का मत है कि एक ही जाति के दो गोत्रों के संगम से ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो अपने माता पिता में सामान्यतया आकृति में मिलती जुलती होने पर भी रूप और गुण दोनों में उनसे बढ़कर होती है. मदायन के पतन और सासानियों के विच्छिन्न 2 होने के बाद 3 शताब्दियां बीत गईं. इस बीच आधुनिक फारसी ने जन्म, विकास और प्रगति के विभिन्न सोपानों को पार किया. अंत में 4th शताब्दी हिजरी के प्रारंभ में आर्य और सेमेटिक जातियों के महान जातीय गुणों की वारिस इस नवजात ईरानी अरबी जाति ने आधुनिक ईरान को जन्म दिया. तब से इसने संसार को अनेक आश्चर्यजनक उपहार दिए, जिसमें से एक है फारसी काव्य. 3. 1. दी लिगेसी ऑफ पर्शिया, संपादक डॉक्टर ए जे आरबेरी, लंदन, सन 1953 ईस्वी, प्रोफेसर एच डब्ल्यू बेली का लेख दी पर्शियन लैंग्वेज, पृष्ठ 185. 2. सन 637 ईस्वी में अरब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मदायन, तेसी फोन के पतन और 651 ईस्वी में यजद जर्द तृतीय की मृत्यु के पश्चात सासानी साम्राज्य का मूलोच्छेद हो गया. 3. डॉक्टर अली असगर हिकमत, फारसी साहित्य की रूपरेखा, वाराणसी, सन 1957 ईस्वी, पृष्ठ 115-17, पृष्ठ संख्या 509. इस प्रकार वस्तुतः 7th शताब्दी ईस्वी से पहलवी भाषा आधुनिक फारसी के रूप में विकसित होने लगी. 1. इसने अरबी से नए पारिभाषिक शब्द और मुहावरे ग्रहण किए. धीरे धीरे ध्वनि और शब्दोच्चारण में भी परिवर्तन हुआ और यह अरबी लिपि में लिखी जाने लगी. अंततः नवजात भाषा का होनहार बिरवा एक मनोहर घने वृक्ष के रूप में फूला फला और सुंदर फलों का वाहक बना. आजकल इसमें अरबी शब्दों की इतनी भरमार हो गई है और अरबी प्रभाव इतना बढ़ गया है कि प्राचीन पारसी के साथ इसकी समानता अनेक अंशों में सर्वथा लुप्त हो चुकी है. रूसी तुर्किस्तान की ताजिकी, अफगानिस्तान की पश्तो तथा बलूचिस्तान की बलूची भाषाएं नई ईरानी ही की प्राशाखाएं हैं. 2. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा. आर्य लोग ईरानी वर्ग से पृथक होकर अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों तथा दर्रों से होते हुए प्रायः 1500 ईसवी पूर्व 3 में पंजाब के मैदानों में प्रविष्ट हुए. यहीं से भारतीय आर्य भाषा का समय प्रारंभ होता है. 1. पैदास्त की जबाने पहलवी, दर ई मुद्दत, दर दौरा ए इस्तिला ए अरब तैग रुआते, पैदा कर्द ब बतरीज व जबाने कानूनी मुनकलिब शुद्ध, अर्थात स्पष्ट है कि इस काल में, अरबों के प्रभुत्व काल में, पहलवी भाषा के अंदर परिवर्तन होने लगे और उसने शनै शनै आधुनिक फारसी का रूप धारण कर लिया. डॉक्टर रिजा सदा शफक, तारीखे अदबियाते ईरान, 1336-1337, पृष्ठ 38. 2. डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, हिंदी भाषा का इतिहास, प्रयाग, सन 1949 ईस्वी, पृष्ठ 40. 3. तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आर्यों के आगमन का समय 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास कूटा जाता है. डॉक्टर बाबूराम सक्सेना. सामान्य भाषा विज्ञान, प्रयाग, संवत 2006 विक्रम, पृष्ठ 259। पृष्ठ संख्या 510। पहले पहल जब आर्य भारत में प्रविष्ट हुए होंगे तो यह संभव है कि उनकी भाषा ईरानी भाषा के बहुत अधिक निकट हो, परंतु धीरे धीरे उनकी भाषा में अनेक परिवर्तन होने लगे, जिससे भारतीय आर्य भाषा ईरानी भाषा से पृथक अपना स्वतंत्र अस्तित्व धारण करने लगी। सुभीते के लिए इस शाखा को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, प्राचीन युग, आर्यों के भारत प्रवेश से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। दो, मध्य युग, 500 ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी तक। तीन, वर्तमान युग, 7वीं शताब्दी से अब तक। प्राचीन युग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का युग है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को साधारणतया संस्कृत कह दिया जाता है। इसमें वैदिक और लौकिक क्लासिकल दोनों रूप सम्मिलित हैं। वैदिक भाषा को छांदस भी कहा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इस वैदिक अथवा छांदस भाषा के विशिष्ट नियम दिए हैं, जिनसे लौकिक भाषा का भेद स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भाषा वैदिक या छांदस कहलाती है। इन संहिताओं के उत्तर काल के ग्रंथों की भाषा को लौकिक की संज्ञा दी गई है। मध्य युग, भगवान बुद्ध के समय 500 ईसा पूर्व ही से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल प्रारंभ होता है। वस्तुतः इससे पूर्व ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रचलित थी, परंतु महत्व की दृष्टि से उनका वास्तविक काल यहीं से आरंभ होता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है, अतएव इसे प्राकृत काल भी कहा जा सकता है। प्रारंभ में प्राकृत को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक, पाली और दो, अशोकी प्राकृत। पृष्ठ संख्या 511। पाली का उल्लेख धार्मिक प्राकृत के अंतर्गत किया जाता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल में अनेक स्थानों पर शिलालेख खुदवाए थे। इनकी भाषा को अशोकी प्राकृत का नाम दिया जाता है। बाद में प्राकृत में साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगी। साहित्यिक प्राकृत के मुख्य भेद शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची हैं। इन प्राकृतों के अतिरिक्त महाराष्ट्री का उपभेद जैन महाराष्ट्री तथा शौरसेनी का जैन शौरसेनी है, जिनका नामकरण पाश्चात्य विद्वान हरमन याकोबी ने किया। एक, प्राकृत के अन्य भी कई उपभेद हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। उक्त पांच प्राकृतें ही इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल दो प्रकार की प्राकृतें शौरसेनी तथा मागधी मानते हैं। उनके शब्दों में वर रुचि ने दो ही भाषाओं की चर्चा की है, शौरसेनी अर्थात पश्चिमी हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा और मागधी अर्थात बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि की पूर्ववर्ती भाषा। दो, आधुनिक युग, इसमें अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 7वीं शताब्दी से लेकर अब तक का साहित्य निर्मित हुआ है। साहित्यिक दृष्टि से भामह 7वीं शती ईस्वी और दंडी 7वीं शती ईस्वी के समय तक अपभ्रंश चमक उठी थी। भामह ने अपभ्रंश का एक भाषा शैली के रूप में उल्लेख किया है। तीन, दंडी ने काव्य में प्रयुक्त होने वाली आभीर आदि लोगों की भाषा को अपभ्रंश कहा है। चार, एक, हिंदी साहित्य कोश बनारस संवत 2015 ईस्वी पृष्ठ 493। दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका बंबई सन 1954 ईस्वी पृष्ठ 27। तीन, काव्यालंकार 1, 16, 23, 26। चार, आभिरादि गिरह काव्यश्वपभ्रंश इति स्मृतः काव्यादर्श 1, 36। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भामह और पृष्ठ संख्या 512, दंडी 7वीं शताब्दी के समय में अपभ्रंश का साहित्य वर्तमान था, यह सभी जानते हैं। एक, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना उचित समझा था। दो, परंतु अब सब विद्वान इसे हिंदी ही कहते हैं, अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता। तीन, निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश से क्रमशः विकसित हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य ही मूल रूप समझा तो ठीक ही किया है। चार, हम देखते हैं कि अंग्रेजी अथवा फ्रेंच साहित्य का इतिहास लिखते समय पुरानी अंग्रेजी अथवा प्राचीन फ्रेंच का परित्याग नहीं किया जाता है, ना उनको अलग माना जाता है। यद्यपि उन भाषाओं के नवीन तथा प्राचीन रूपों में बहुत अंतर है। इसी न्याय से हिंदी साहित्य का प्रारंभ यदि हम अपभ्रंश साहित्य से मानते हैं तो इसमें तनिक भी अनौचित्य नहीं है। हमारे विचार से विकास क्रम की दृष्टि से अवेस्ता, प्राचीन फारसी, पहलवी तथा आधुनिक फारसी को वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं के समानांतर रखा जा सकता है। पहले सोपान पर वैदिक भाषा और अवेस्ता में सबसे अधिक सादृश्य है, तदनंतर पार्थक्य होता जाता है। कालांतर में यह पाठ अत्यधिक बढ़ गया है। एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, हिंदी विभाग, पंजाब, सन 1961-62, पृष्ठ एक। दो, डॉक्टर नागरी प्रचारणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग दो, अंक चार। तीन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 17। चार, वही, पृष्ठ 16।